नमस्ते फ्रेंड्स, हम सबका स्वागत ओशो रेडियो में। ओशो के वर्ड्स, म्यूज़िक हमें ले चलते हैं टाइमलेसनेस में। शुरुआत करते हैं रामानंदा की एल्बम सीक्रेट लैंग्वेज से लिए गए एक नंबर के साथ, जो कि बेस्ड है रूमी की पोएम्स पर।
What is the soul? I cannot stop asking. If I could taste one sip of an answer, I could break out of this prison for drums. I didn't come here of my own accord, and I can't leave that way. Whoever brought me here will have to take me home. What is the soul? I cannot stop asking. 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 If I could taste one sip of an answer, I could break out of this prison for drunks. If I could taste one sip of an answer, I could break out of this prison for drunks. What is the soul? I cannot stop asking. What is the soul? I cannot stop asking. I didn't come here of my own accord, and I can't leave that way. I didn't come here of my own accord, and I can't leave that way. Whoever brought me here will have to take me home. Whoever brought me here will have to take me home.
What is this soul I cannot stop asking? 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 If I could taste one sip of an answer, I could break out of this prison for drunks. If I could taste one sip of an answer, I could break out of this prison for drugs.
आज के एपिसोड में डिस्कोर्स कोपलें फिर फूट आई वॉल्यूम नंबर 4 से लिया गया है, जिसे 1986 में बॉम्बे में रिकॉर्ड किया गया था। आप इन डिस्कोर्सेस को पूरा osho.world.com से फ्री डाउनलोड करके सुन सकते हैं।
उठम शरणम तदच्युते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते
परसों ही आपने कहा कि अपने को जाने बिना अर्थी नहीं उठने देना। यह चुनौती तीर की तरह हृदय में चुभ गई। हम कैसे अपने को जानने की ओर जुट जाएं? कहां से और कैसे शुरू करें?
मनुष्य के बहुत से नाम अरबी में, उर्दू में, पर्शियन में आदमी मनुष्य का पर्यायवाची होना नहीं चाहिए। कि मनुष्य का अर्थ होता है जो मनन करे, और आदमी का अर्थ होता है जो मिट्टी का बनाए। अंग्रेजी में भी मनुष्य का पर्यायवाची है ह्यूमन, होना नहीं चाहिए, गलत है अनुवाद। ह्यूमन शब्द बनता है ह्यूमस से, गीली मिट्टी से, चूंकि इस्लाम और ईसाई दोनों ही आदमी को मिट्टी का बना हुआ पुतला मानते, जिसमें ईश्वर ने सांस फूंक दी, सिर्फ इस देश में आदमी को मिट्टी का पुतला नहीं माना गया, इस देश में आदमी के होने की पहचान है उसके मनन की क्षमता, इसलिए हम उसे कहते हैं मनुष्य। मनन की अनेक दिशाएं हो सकती, चित्रकार भी सोचता है, मूर्तकार भी सोचता है, दार्शनिक भी सोचता है, धर्मगुरु भी सोचता है, वैज्ञानिक भी सोचता है, लेकिन ये सारे सोचने की प्रक्रियाएं बाहर की तरफ जाती, ये किसी और विषय की तरफ इंगित करती। जिसको हमने ज्ञानी कहा है वो अपने सारे सोचने की दिशाओं को भीतर की तरफ मोड़ लेता, वो सिर्फ अपने संबंध में ही सोचता, उसके लिए जगत में कुछ और सोचने योग्य नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिसे अपना ही पता नहीं है उसे किसी और चीज का क्या पता हो सकता। अल्बर्ट आइंस्टीन इस सदी के सर्वाधिक बड़े विचारकों में थे, लेकिन मरते वक्त उन्होंने जो कहा वो उनके जीवन भर की पीड़ा का निचोड़। किसी ने पूछा, आइंस्टीन जब सांस तोड़ रहे थे, कि अगर पूरब के लोग सच हों और पुनर्जन्म होता हो तो आप आगे भी वैज्ञानिक ही होना चाहेंगे या कुछ और? मनुष्य के आखिरी वचन बड़े महत्वपूर्ण होते, वो उसके सारे जीवन का निचोड़ होते, क्योंकि उसके बाद फिर उनमें सुधार करने की भी कोई सुविधा न रहेगी। आइंस्टीन ने आंखें खोली और कहा कि फिजिसिस्ट होने की बजाय मैं एक प्लम्बर होना पसंद करूंगा, ताकि कुछ समय अपने संबंध में सोचने के लिए भी तो दे सकूं। मेरा सारा समय चांद तारों के संबंध में सोचने में खो गए और मैं वैसा ही अज्ञानी मर रहा हूं जैसा अज्ञानी पैदा हुआ, और दुनिया मुझे ज्ञानी कहती। अगर कोई आगे मेरा जन्म हो तो मैं वैसा ही नहीं मरना चाहता हूं जैसा पैदा हूं। मैं जाग कर अपने को जीत कर अपने को पहचान कर इस जगत से विदा होना चाहता हूं। ये जीवन तो गया, ये तो बह गया, अब इसमें तो कोई संभावना ना बची। जिस चिंतन और मनन के लिए मैंने तुमसे कहा है उसमें पहली बात है कि सब तरफ से अपने विचारों को खींचकर अपने पर ही आमंत्रित कर ले, और एक जादू घटित हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम सोच सकते हो केवल उसी चीज के संबंध में जिसके संबंध में तुमने पढ़ा हो, सुना हो, किसी ने कुछ कहा हो। तुम अपने संबंध में क्या सोचो, जैसे ही व्यक्ति सारे बाह्य चिंतन को छोड़ देता है और उसकी आंखें सिर्फ अपने ही रूप पर टिक जाती, विचार थम जाता। इसलिए मैंने कहा एक जादू घटित हो, तुम अपने संबंध में सोच नहीं सकते। वहां सोचना शून्य हो जाता, वहां सिर्फ देखना शेष रह जाता। इसलिए हमने इस देश में उस घड़ी को दर्शन की घड़ी कहा, चिंतन की नहीं। तुम देखते तो हो कि तुम कौन हो, लेकिन सोचने को कुछ बाकी नहीं। तुम जो भी हो पूरे के पूरे खुले हो और नग्न हो, और यही आत्म पहचान तुम्हें जीवन के सार्थकत्व से परिचित करा देती, उस अमृत से परिचित करा देती है जिसका कोई अंत नहीं। शरीर आए हैं और गए, शरीर आएंगे और जाएंगे। जब तक कि तुम अपने को न पहचान लो, नए नए रूपों में, नए नए ढंगों में तुम इसी संसार में भटकते रहोगे। और जिसने अपने को जान लिया उसकी फिर इस संसार में आने की कोई जरूरत ना रही। संसार तो यूं है जैसे कोई पाठशाला हो। जब तक तुम असफल होते हो तब तक वापस पाठशाला में लौट आना पड़ता, और जब तुम सफल हो जाते हो तो पाठशाला से छुट्टी हो जाती। संसार बुरा नहीं, विद्यालय, इसको घृणा मत करना। ये अस्तित्व की देन है, क्योंकि इसी के बीच इस बात की संभावना है कि तुम किसी दिन टकराते टकराते गिरते और उठते, संभलते और संभलते अपने को जान लोगे। और जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए जानने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता। ये ज्ञान की परम दशा हमने समाधि कही। तुम एक शब्द से परिचित हो, व्याधि। व्याधि का अर्थ है बीमारी। ये दूसरा शब्द है समाधि। समाधि का अर्थ है व्याधियों के ऊपर उठ जाना, सारी व्याधियों का सम हो जाना, शांत हो जाना। इस देश ने अपने शब्द भी बहुत सोच सोच के गढ़े हैं। वो अंधे नासमझ व्यवहारिक लोगों के द्वारा नहीं गढ़े गए, आंख वालों ने उन्हें तराशा है। अगर हम उन शब्दों को भी ठीक से समझ लें तो इशारे मिलने शुरू हो जाएंगे। सारी दुनिया में स्वास्थ्य जैसा कोई शब्द नहीं, हालांकि हर भाषा में स्वास्थ्य को अनुवादित करने के लिए शब्द हैं। हेल्थ है, लेकिन हेल्थ का अर्थ होता है घाव का भर जाना। वो बड़ी छोटी बात है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वयं में स्थित हो जाना, स्वस्थ हो जाना। इसका किसी घाव के भरने से संबंध नहीं है। तुम हो लेकिन अपने से भागे भागे, तुम हो लेकिन अपने से दूर दूर, तुम हो लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम कहां हो। जिस दिन तुम स्वस्थ हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो, अपनी चेतना में ठहर जाते हो, जैसे कोई दिए की ज्योति निष्कम ठहर जाए, कोई हवा का झोंका उसे हिलाए नहीं, वैसी ज्योति के भांति जब तुम अपने भीतर ठहर जाते हो तो जो प्रकाश का आविर्भाव होता है, जो किरणें विकिरणित होती, उसे ही मैंने मरने के पहले अपने को जानना कहा है, और मरने के पहले पर जोर दिया है क्योंकि अगर तुम जीवन में भी जीवन को न जान सके तो मृत्यु में कैसे जान सकोगे। मृत्यु तो अंधेरी गुफा है। हां ये सच है कि जिन्होंने अपने को जीवन में जान लिया है उनकी आंखों में इतनी रोशनी होती कि वो मौत की अंधेरी गुफा में भी अपने को भूलते नहीं, वो मौत की अंधेरी गुफा में भी अपने को जानते। बुद्ध के जीवन में घटना है उनके अंतिम दिन की। सुबह हुई है, पक्षियों ने गीत गाए हैं, फूल खिले हैं, और उन्होंने अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया है और उनसे कहा है कि मैं तुम्हें एक सुखद समाचार देता हूं। ध्यान करना, उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक सुखद समाचार देता हूं। वे सब निश्चित बहुत आतुर हो उठे क्योंकि बुद्ध ने 40 वर्षों के शिक्षण में कभी भी ये न कहा था कि मैं तुम्हें एक सुखद समाचार देता हूं। हालांकि उनके हर शब्द में सिवाय सुखद समाचार के और कुछ भी न था। आज कौन सी अनूठी बात घटने की, आज कौन सा कोहनूर उनके शब्दों में जगेगा, आज कौन सा सूरज उगेगा। एक सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने कहा आज मैं शरीर छोड़ रहा हूं। जीवन को बहुत देख लिया, जीवन को बहुत जी लिया, आज मैं मौत के अंधेरे में प्रवेश कर रहा हूं। लेकिन वो अंधेरा दूसरों के लिए होगा, वो अंधेरा मेरे लिए नहीं। मैं इतना ही ज्योतिर्मय, इतना ही प्रकाशोज्वल उस अंधेरे से भी गुजर जाऊंगा जैसे जीवन से गुजरा हूं। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हें एक सुखद समाचार देता हूं। मृत्यु का समाचार और सुखद, तुम्हें कुछ पूछना हो तुम पूछ लो। 10,000 भिक्षुओं में किसकी हिम्मत थी और किसकी जरूरत थी कि जिस आदमी ने 40 वर्षों तक हर बात को समझाया हो आज मरने की घड़ी में भी उसको चैन से न मरने दिया जाए। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन उनकी जवानों पर कोई सवाल नहीं। उन्होंने कहा हमें कुछ पूछना नहीं, आपने हमें इतना दिया है जितना हमने कभी सोचा भी ना था। आपने हमारे वे उत्तर भी हमारे हाथों में थमा दिए हैं जिनके लिए हमारे पास प्रश्न भी नहीं। अब हम आपसे और क्या पूछें। तो बुद्ध ने कहा मैं विदा ले सकता हूं, और उन्होंने आंखें बंद की और घटना बड़ी प्यारी है कि उन्होंने पहले चरण में शरीर को छोड़ दिया। दूसरे चरण में मन को छोड़ दिया। तीसरे चरण में हृदय को छोड़ दिया। और तभी गांव से, पास के गांव से एक आदमी भागा हुआ आया और उसने कहा कि ठहरो, चालीस साल से बुद्ध मेरे गांव से गुजरते रहे लेकिन मैं अंधा आदमी हूं, हमेशा सोचता रहा कि अगली बार जब आएंगे तब मिल लूंगा, यूं जल्दी भी क्या है। और फिर कभी मेहमान घर में थे और कभी दुकान पर भीड़ थी और कभी पत्नी बीमार थी, और बहाने ही खोजने हो तो अंतहीन बहाने उपलब्ध हैं। बुद्ध आते रहे जाते रहे, अभी अभी मैंने सुना कि वो जीवन छोड़ रहे हैं। और मुझे एक प्रश्न पूछना, बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद ने कहा अब देर हो गई, अब बहुत देर हो गई, वे तो जा भी चुके, लेकिन बुद्ध ने आंख खोल दी और बुद्ध ने कहा आनंद तू मेरे ऊपर दोषारोपण करवा देगा, आने वाली सदियां कहेंगी कि मैं जिंदा था और एक आदमी मेरे द्वार से प्यासा लौट गया, शरीर छूट जाए मन छूट जाए हृदय छूट जाए लेकिन मैं तो हूं और मैं तो कभी छूटने वाला नहीं हूं। तुम मेरे शरीर को जाके अर्थी पर चढ़ा के जला देना, लेकिन अगर किसी ने हृदय से भर के मुझसे प्रश्न पूछा तो उसे उत्तर मिल जाए, क्योंकि मैं तो हूं, मैं तो रहूंगा, मुझे जलाने का कोई उपाय नहीं और मुझे मिटाने का कोई उपाय नहीं, मैं अमृत हूं। इस देश की प्रार्थना बड़ी अद्भुत है। दुनिया में बहुत मंदिर हैं और बहुत मस्जिदें हैं और बहुत गिरजाघर हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं बचकानी। सिर्फ इस देश ने प्रार्थना की है कि हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, हमें क्षणभंगुर से शाश्वत की ओर ले चलो। इसमें कोई भी बात क्षुद्र नहीं। और ये प्रार्थना किसी और से नहीं की गई, क्योंकि कोई और तुम्हें ले जा नहीं सकता, केवल तुम ही और केवल तुम ही मृत्यु से अपने को अमृत की ओर ले जा सकते हो। अपने जानने की सारी क्षमता को स्वयं पर केंद्रित कर लो। दूसरे शब्दों में मैं इसे ध्यान कहता हूं। ज्ञान दूसरे का होता है, ध्यान अपना होता है। ज्ञान पराये का होता है, ध्यान स्वयं का होता है। अपने ज्ञान को ध्यान में बदल लो, तो इसके पहले तुम्हारी अर्थी उठे तुम उसे जान लोगे जिसकी कोई अर्थी नहीं उठती है और न कभी उठ सकती।
प्रोग्राम में लिया गया अन्य संगीत म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो से और मानिको की एक एल्बम से लिया गया है। तो एक नए एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
योगस्तु भयार्थम अपेक्षणात् प्रयाजवत्। और योग तो वाजपेय यज्ञ में प्रयाज की भांति भक्ति और ज्ञान का अंग स्वरूप है। और सांडिल्य कहते हैं कि जैसे ज्ञान समझ हो तो सहयोगी हो सकता है भक्ति में, समझ हो तो ज्ञान अपने आप में सहयोगी नहीं होता, समझ लेना ठीक से, समझ हो तो जहर भी अमृत हो सकता है और ज्ञान जहर है। जरा ही ना समझेगी तो औषधि नहीं रह जाएगी, उसी से व्याधि पैदा हो जाएगी। ज्ञान समझ पूर्वक हो, समझ का मतलब ये बात याद रहे कि जो मैंने नहीं जाना है वो सिर्फ जानकारी, ये बात याद रहे कि औरों ने जाना है, मुझे खोजना है अभी। ज्ञान से प्यास जगे सत्य की तो समझ, और ज्ञान से तृप्ति होने लगे कि पा लिया जान लिया तो मृत्यु, तो तुम मारे गए, तो तुमने आत्महत्या कर ली, ज्ञान की फांसी लगा ली। ज्ञान में बोध होना चाहिए, यह याद सदा ही रहा रहे कि यह मेरा जाना हुआ नहीं। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, सांडिल ने कहा है, सांडिल ने कहा तो ठीक ही कहा होगा, लेकिन मैं नहीं जानता हूं, और जब तक मैं नहीं जानता हूं मैं कैसे गवाह बनूं, मुझे खोजना है अभी। और सांडिल ने कहा है, बुद्ध ने कहा, नारद ने कहा, कृष्ण ने कहा, इतने लोगों ने कहा है, तो खोजना होगा। फिर बैठू ना, जीवन गवाऊं ना, मैं भी इस खोज पर निकलूं, और इन सब ने कहा परम आनंद है उस उपलब्धि से, तो मेरा जीवन ऐसे ही रेगिस्तान न रह जाए, मरुद्धान बनाऊं, एक बगिया लगाऊं, फूल खिलाऊं, मगर मेरे फूल खिलेंगे तभी गवाही दे सकूंगा, तभी कह सकूंगा बुद्धों से कि हां ठीक कहा। जब तक मेरे फूल न खिलेंगे तब तक तुम्हारी बात सुन के अपनी प्यास को जगाऊंगा, अपनी खोज को त्वरा दूंगा, तीव्रता लाऊंगा, और भी बल लगाऊंगा, अपनी सारी ऊर्जा समर्पित कर दूंगा कि जब इतने महापुरुषों ने कहा है तो पाने योग्य कुछ होगा, खोजूं, लेकिन जब तक स्वयं न पालूं तब तक ये न कहूंगा कि मैंने जान लिया है, क्योंकि वह तो झूठ होगा, वह तो ज्ञान के साथ अन्याय होगा। ज्ञान अगर बोधपूर्वक हो तो भक्ति में सहयोगी बन जाता है। सांडिल कहते हैं ऐसे ही योग भी सहयोगी बन जाता है अगर समझ पूर्वक हो। योग बड़ी महिमापूर्ण प्रक्रिया है, साधन है। योग साध्य नहीं है, भक्ति साध्य है। ज्ञान साध्य नहीं है, भक्ति साध्य है। ज्ञान का उपयोग कर लेना प्यास जगाने के लिए, और योग का क्या उपयोग करोगे? योग का उपयोग करना अपने को शुद्ध करने के लिए। परमात्मा के आने के पूर्व तैयारी करनी होगी ना, घर में मेहमान आता है तो स्वच्छता करते हो ना, झाड़ू बुहारी लगाते हो ना, कूड़ा करकट साफ करते हो ना। योग वही है, उस परम प्री को पुकारा है तो घर की तैयारी कर लेनी जरूरी है। उसके योग्य आसन बिछाओगे ना, उसके योग स्वच्छता चाहिए, पुनीतता चाहिए, पवित्रता चाहिए। धूप दीप जलाओगे ना, वही योग है। योग का इतना ही अर्थ है जो कलमस है उसे धो डालूं, जो दीवालें गंदी हो गई हैं मेरे जीवन के अनाचरण से, मेरे जीवन के अज्ञान से, मेरे जीवन की मूर्छा से, वे सब धब्बे साफ कर डालूं, स्वच्छ कर लूं घर, ताकि उसे असुविधा ना हो। जब तुम्हारे पात्र में अमृत भरने को हो तो जो जहर के दाग लग गए हैं उन्हें छुड़ाओगे ना, बस वही है योग। समझ हो तो योग की प्रत्येक प्रक्रिया अनूठी है, शुद्धि का अपूर्व मार्ग है, तुम्हारे रोए रोए को शुद्ध कर जाएगी, पुनीत कर जाएगी, पावन कर जाएगी, तुम्हें तैयार कर जाएगी, तुम्हें मंदिर बना देगी जिसमें कि विराजमान हो सके परमात्मा, तुम्हें सिंहासन बना देगी जिस पर वह हृदयों का सम्राट आए और बैठे। मगर अक्सर ऐसा होता है कि समझ है कहां, ज्ञान इकट्ठा करके आदमी पंडित हो जाता है, प्रज्ञावान नहीं होता, और योग की प्रक्रियाओं में पड़ के आदमी गोरख धंधे में पड़ जाता, बस वो फिर व्यर्थ की बातें ही करता रहता, आसन लगाया रहता, आसन जमाया जाता है, उल्टे सीधे व्यायाम करता रहता है, सिर के बल खड़ा होता रहता है, धीरे धीरे यही उसकी जीवनचर्या हो जाती। वो भूल ही जाता है कि मेहमान को भी बुलाना है। वो मंदिर ही बनाने में इतना मशगूल हो जाता है कि मेहमान द्वार पे भी आके खड़ा हो जाए तो भी वो आंख उठा के नहीं देखता, वो मंदिर ही बनाने में लगा रहता है, वो सफाई ही करता रहता है। सफाई का फिर कोई अंत नहीं, फिर तुम करते ही चले जाओ। ये देह पूर्ण शुद्ध तो हो ही नहीं सकती, ये देह अशुद्धि से बनी। शुद्ध हो सकती, पूर्ण शुद्ध कभी नहीं हो सकती। स्वस्थ हो सकती, पूर्ण स्वस्थ कभी नहीं हो सकती। पूर्णता का देह से संबंध नहीं जुड़ सकता। देह तो अपूर्ण रहेगी, सीमा में बंधी रहेगी, इसमें तो व्याधियां आधियां रहेंगी। समाधि इसमें फलानी है, इसलिए जितनी व्याधियां कम हो उतना अच्छा। लेकिन तुम इसी फिक्र में मत पड़ जाना कि जब सब व्याधियां समाप्त हो जाएंगी तब देखेंगे समाधि, तो फिर तुम कभी ना देख पाओगे समाधि को। एक व्याधि हटेगी दूसरी पैदा होगी, दूसरी हटेगी तीसरी पैदा होगी। इसी से तो गोरख धंधा शब्द पैदा हुआ, वो गोरखनाथ से पैदा हुआ। गोरखनाथ महायोगी हुए, उन्होंने योग की प्रक्रियाओं का जैसा प्रयोग किया किसी ने कभी नहीं किया था। पतंजलि भी देखते तो सिर ठोंक लेते, क्योंकि गोरखनाथ ने बड़ी प्रक्रियाएं कृच्छ साधनाएं खोजी। सुबह से लेकर सांस तक लगे ही रहते थे और दूसरों को भी लगाए रखते थे। उसी से गोरख धंधा शब्द पैदा हुआ, भूल ही गए असली बात, इसी में लग गए, गौण में उलझ गए। अगर समझ हो तो गौण में मत उलझना। और ख्याल रखना, गोरखनाथ स्वयं उलझ गए ऐसा नहीं, गोरखनाथ के मानने वाले उलझ गए। गोरखनाथ ने तो जो प्रक्रियाएं दी थी, यद्यपि बहुत प्रक्रियाएं दी थी, वो अलग अलग साधकों के लिए दी थी। किसी को एक प्रक्रिया दी थी, किसी को दूसरी दी थी, किसी को तीसरी दी थी। धीरे धीरे यह हुआ कि साधकों को तो लोभ होता, लोभ पैदा होता है। उन्होंने सोचा कि फलां फलां कर रहा है, फलां फलां कर रहा है, हम भी सब कर डालें। यहां शिविर में तुम 5 ध्यान करते हो, उनमें से एक चुन लेना है। वो सिर्फ चुनाव के लिए। एक सज्जन मेरे पास आए कुछ महीने पहले, उनकी हालत बहुत खराब हुई जा रही, कहने लगे कि ध्यान से बड़ी हालत खराब हुई जा रही। मैंने पूछा कि कौन सा ध्यान करते हो, उनका कौन सा क्या, 10 ध्यान करता हूं, जितने आपने बताए हैं सब करता हूं, सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लगे ही रहता हूं, हालत तो खराब हो ही जाएगी, मेरा कसूर नहीं। मैंने तुमसे कहा कब कि तुम सब करना, और सब करोगे तो और कब बचेगा कुछ करने को। भगवान को आने की थोड़ी बहुत जगह भी दोगे, वो द्वार पे ही खड़ा रहेगा। कभी तुम कुंडलनी कर रहे, कभी तुम सकरी कर रहे, और कभी तुम नाद ब्रह्म कर रहे, और कभी तुम सूफी कर रहे, और कभी तुम कुछ कर रहे, वो बाहर ही खड़ा रहेगा। भाई तुम चुको, तुम्हारे झंझट से मुक्त हो तो मैं भी आऊं, 2 बात तुमसे कर लूं, मगर तुम्हें फुर्सत कहां, थक जाओगे तब सो जाओगे, सुबह फिर उठोगे, फिर अपने गोरख धंधे में लग जाओगे। गोरख धंधा हो गए। गोरखनाथ ने गोरख धंधा नहीं दिया था, गोरखनाथ ने तो अलग अलग साधकों को अलग अलग प्रक्रियाएं दी थी। मगर लोग पकड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रक्रिया से न मिले तो उससे मिल जाए, उससे न मिले तो उससे मिल जाए, सभी कर डालो। आदमी बड़ा लोभी, उस लोभ से गोरख धंधा पैदा हुआ। अज्ञानी जो भी करेगा उसमें से कुछ न कुछ उपद्रव निकाल लेता है। तुम इससे सावधान रहना।
singing Your blessings have filled my life Your being moves my heart to singing Here I am and here you are so patiently waiting for me to wait Here I am and here you are so silently giving Your love has filled my life Your being moves my heart to singing Your blessings have filled my Singing.